वाणी में आता है, सब संपत मन को दुखदाई, भजो निरंजन सुख रूप समय। सारी संपत्ति अर्थात सब तरह की संपत्ति मन के लिए दुखदाई है, फिर सुखरूप क्या है, कह रहे भजो निरंजन सुखरूप समय। केवल जो प्रभु हैं वही वास्तव में सुखरूप हैं, वही जाकर ये मन संतुष्ट होता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखें इसको तो सारे व्यक्तियों का एक ही निश्चय होता है, जितनी संपत्ति जितनी सुविधाएं हम इकट्ठी कर लेंगे अपने पुरुषार्थ से, उतना ही जीवन सुखी हो जाएगा। तो बाहर से देखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन सत्पुरुष मन के रहस्य को जानते हैं, ईश्वर के रहस्य को जानते हैं, इस जीव के रहस्य को जानते हैं, इसलिए वो हमारे कष्ट को संसार में नहीं देखते, वो हमारे कष्ट को मन के अंदर देखते हैं। उनकी दृष्टि हमारे मन पर होती है। और मैं अपने बारे में खुद भी निरीक्षण करूं तब आप यही पाएंगे कि बेचैनी मन में होती है। उस बेचैनी से मुक्ति पाने के लिए उसका साधन मैं संसार में तलाश करता हूं। ये मेरी सोचने की प्रक्रिया है, मेरा जो सांसारिक ज्ञान है वो इसी प्रकार का है। तो सब संपत्त मन को दुखदाई, ये बात कैसे समझ में आए? संपत्ति से आप क्या करोगे? विभिन्न प्रकार के भोग विलास इकट्ठे करोगे, उनको भोगोगे। तो जितनी आप सामग्री इकट्ठी करोगे, उसके लिए कमाई करोगे, फिर उसको भोगोगे, तो इसके लिए मन को कितना चंचल करना पड़ेगा, विचार करते हुए मन से कितना सोचना पड़ेगा, दिन रात महीने वर्ष निकलते चले जाएंगे, और इसकी प्लानिंग और इसको अमल में लाना, इसी के बारे में सारा मनन आपके मन के अंदर चलता रहेगा। तो मन के अंदर जितना भी अधिक से अधिक संसार का मनन चलेगा, उतना ही मानसिक बेचैनी आपको सहन करनी पड़ेगी। अपने आप में तो मनुष्य शांत है लेकिन मन के कारण वो बेचैन है। तो जितनी भी संपत्ति है या सुख के साधन है, अध्यात्म विद्या कहती है कि ये पांच हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम उनके द्वारा या उन वस्तुओं के माध्यम से सुख भोगने की कोशिश करते हैं। लेकिन सारे सुख सांसारिक सुख जितने भी हैं, ये पांच विकार के अंतर्गत आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब बताइए, हम भोग तो रहे हैं सुख, लेकिन मन की चंचलता बढ़ती चली आ रही है, मन के अंदर इच्छाएं विकसित होती चली आ रही है, आप कभी भी किसी भी हालत में तृप्त नहीं हो पाते। इसीलिए सारे संसार का इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे वर्तमान का देख लीजिए समय, या पास्ट का देख लीजिए आप, या फ्यूचर की कल्पना कर लीजिए, कि जितना विकास होता है उतनी ही बेचैनी बढ़ती ही चली जाती है। बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े लक्ष्य मनुष्य निर्धारित कर लेता है और उसके पीछे दौड़ लगाता रहता है। इसीलिए संपत्ति जो है, जिसके द्वारा हम सुख की कल्पना करते हैं, वास्तव में ये हमारी मानसिक बेचैनी को बढ़ा देती है। जिस प्रकार शरीर में यदि रोग बढ़ेगा तो आप बेचैन हो गए या नहीं हो गए, उसी प्रकार ये मानसिक रोग बढ़ जाता है जो पांच विकार के अंतर्गत आता है। इसीलिए ये बीमारी कभी भी आपकी समाप्त नहीं होती और निरंतर ये बेचैनी आपके अंदर बनी रहती है। तो तो मन की कल्पना का विकास होना, मन के अंदर इच्छाओं का विकास होना, यही मनुष्य की असली परेशानी है, यही उसका असली रोग है। लेकिन क्योंकि सारा संसार यही सोच रहा है, यही कर रहा है, जैसे बालक को किसी भी चीज की जरूरत हो, उसकी इच्छा हुई, आपने दे दी, चुप हो जाएगा कुछ देर के लिए, लेकिन उसके बाद ये दूसरी चीज के लिए परेशान होता रहेगा। एक साल, दो साल, तीन साल तक के बालकों की हालत देख लो आप परिवार के अंदर, यही प्रक्रिया चलती है, किसी तरह का ज्ञान उनके अंदर होता नहीं है। जिस चीज की इच्छा हुई उसके लिए रोना शुरू, उसके लिए परेशान होना शुरू, तरह तरह से आप उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, कुछ चीजें देकर उनको चुप करते हैं, लेकिन उनकी बेचैनी सुबह जागने से लेकर रात्रि के सोने तक बनी ही रहती है और घर वाले भी बेचैन रहते हैं। तो बालक के जीवन की प्रक्रिया यही तो है बस, उसकी शिक्षा तो यह है नहीं, मन क्या होता है ये वो जानता नहीं है, इच्छा कैसे परेशान करती है ये वो जानता नहीं है, जिस चीज के कारण उसको परेशानी हो रही है वो उसको मिलनी ही चाहिए तभी वो चुप हो। इसीलिए बालपना का जो जीवन है ये, इसको दुखदायी जीवन कहा जाता है। वाणी में भी जगह जगह आया है कि बालपना का जो जीवन है ये दुखदायी जीवन है, सबसे ज्यादा बेचैनी वाला जीवन, जिसमें बालक खुद भी बेचैन रहता है और हम भी उसके कारण बेचैन रहते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तब हम अपने आप को बुद्धिमान समझने लगते हैं और फिर जो हमारी कमियां हैं व्यवहार की, जो इच्छाओं के अंदर जो कमियां हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, बस एक ही दौड़ रहती है, अधिक से अधिक एजुकेशन ले लो, अधिक से अधिक पैसा कमा लो, अधिक से अधिक वस्तुएं इकट्ठी कर लो, सुखी हो जाएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया मिलकर आपकी मानसिक बेचैनी का विकास करती है, कैसे आप सुखी हो जाओ, ये असंभव बात है। इस करके ये वाणी कह रही है कि सब संपत मन को दुखदायी, जितने भी सुख के साधन, जितने भी संसार में तो पुरुषार्थ करता है, उनको इकट्ठे करता है सुख प्राप्ति के लिए, ये वास्तव में मानसिक बेचैनी को विकसित करने वाले हैं, मानसिक बेचैनी को बढ़ाने वाले हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी मनुष्य धरती पर रहकर संसारिक विकास करके संतुष्ट नहीं हो सकता, असंभव बात है। तो भजो निरंजन सुख रूप समय, इसलिए वो दूसरी बात कहते हैं कि मन के अंदर यदि प्रभु का सिमरन चले, प्रभु का भजन चले, तब एक दिन ये मन शांत हो जाता है, उस शांति को ही वो सुख रूप कह रहे हैं। तो मानसिक बेचैनी दुख है और मानसिक जो है चंचलता का निवारण है वो सुख है, सुख दुख की परिभाषा तो ये है वास्तव। तो लेकिन वो होगा कैसे, जब आप इस विज्ञान को सीखते हो, इसलिए जो संसार में आप सुख प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हो, उसके लिए जीवन जीते हो, उसमें दोष दर्शन के आपको सिखाया जाता है। पांच तत्व का शरीर है, पांच तत्व की प्रकृति है, पांच तत्व के पांच विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसलिए जितना भी इंद्रियों के द्वारा आप संसार का भोग करोगे, ये विकार आपके अंदर बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे विकार बढ़ेंगे, जैसे बुखार जब बढ़ता है तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी बेचैनी होती है, उसी प्रकार जैसे जैसे ये विकार बढ़ेंगे आपके जीवन में, इनका विकास होगा, आपकी मानसिक बेचैनी बढ़ती ही चली जाएगी। लक्ष्य बड़े होते चले जाएंगे, मानसिक बेचैनी भी बढ़ती जाएगी, सारा जन्म आपका निरर्थक चला जाता है और एक जिसको कहना चाहिए पाप की कमाई करके, क्योंकि जिस चीज से मनुष्य का पतन हो जाए, मानसिक बेचैनी बढ़ जाए, उसी को तो पाप कहते हैं वास्तव में। तो पाप की कमाई करके मनुष्य ये जीवन बर्बाद करके संसार से विदा हो जाता है। तो मनुष्य जन्म जब मिला है तो इस जन्म में ही भगवान ने उसको बुद्धि दी है, हमारे लिए ही वो अवतार लेकर प्रकट होता है, हमारे लिए ही ये वाणी प्रकट होती है, हमारे लिए ये शास्त्र प्रकट होते हैं, हमारे लिए ही ये सब कुछ संगत बना के चले जाते हैं। किसके लिए, ये हमारे लिए ही तो है। और इसका प्रभाव सब चीज का कहां पड़ता है, बुद्धि पर और मन पर। मन और बुद्धि का शोधन जो है यही सत्संग है, यही ईश्वर भक्ति का रास्ता है, यही शांति प्राप्ति का मार्ग है, यही मोक्ष है। जिसकी मैं जरूरत ही नहीं समझता, जितनी सिंसियरिटी से मैं संसार के काम करता हूं, संसार की दौलत इकट्ठी करता हूं, बच्चों का विकास करता हूं, क्या वो सिंसियरिटी मेरे अंदर ईश्वर के मार्ग में चलने में होती है? क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं कन्विंस ही नहीं हूं कि वास्तव में यही बात है। कोई यह बात नहीं जानता कि दौलत ज्यादा इकट्ठी करके, सुख के साधन ज्यादा इकट्ठी करके मैं दुखी हो जाऊंगा, बेचैन हो जाऊंगा। यह निश्चय किसी के अंदर नहीं। इसीलिए ये विज्ञान, अध्यात्म विद्या ये बारीक विद्या है। ये बिना गुरु पर विश्वास आए, बिना गहरा ईश्वर प्रति प्रति विश्वास आए, ये विद्या सीखने को मनुष्य तैयार ही नहीं होता। सुन भी लेगा, पढ़ भी लेगा, लेकिन उस पर चिंतन मन नहीं करता। इसीलिए बुद्धि किसी निर्णय पर नहीं पहुंचती। जब निर्णय पर नहीं पहुंचती तो बुद्धि की हालत, बुद्धि के निर्णय डावाडोल लेते हैं, फिर हम कुछ बात मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन हमारा जीवन का जो चलन है वो लगभग वैसा ही बना रहता है। कुछ पाप कम हो जाते हैं, कुछ व्यवहार शुद्ध हो जाता है, ये बातें तो आ जाती है, लेकिन ईश्वर की खोज ये बात नहीं होती। तो सारा संसार वास्तव में देखा जाए तो ये पांच विकार का जंगल है। इसमें पांच विकार के अलावा है कुछ नहीं। और जो मैं अपनी इंद्रियों को जाना, इनका भोग विलास करता हूं, इनके द्वारा अपने आप को खुश करने की कोशिश करता हूं, तो ये पांच विकार फिर मेरे देह के अंदर मुझको परेशान करते हैं। ये पांचों विकार संसार में हैं तो मेरे देह में भी तो है, देह भी तो जंगल की तरह से। लेकिन ये भी हमको पता है कि रोम रोम में रमत स्वामी, राम नाम भज अंतर्यामी, कि रोम रोम में राम भी है। इस देह में पांच विकार हैं, इस देह में सब कुछ है, लेकिन इस देह में जिसको हम दसवां द्वार कहते हैं, वहां राम वाटिका भी तो है, वहां राम भी तो निवास करते। तो इस देह में पांच विकार भी हैं और शांति का सागर प्रभु भी तो है, इसी देह के अंदर है। मन भी इसी, मेरी बीमारी भी इसी देह के अंदर है। बुद्धि जिससे निर्णय करना है वो भी इस देह के अंदर है। जिस प्रभु का दर्शन करना है वो भी इस देह के अंदर है। तो मैं दोनों काम कर सकता हूं। फर्क इतना ही है कि मेरी बुद्धि का निश्चय क्या है। इसलिए वाणी आपको निर्णय दे रही है और हम इस निर्णय को ऐसे ही पढ़कर सुनकर हवा में उड़ा देते हैं। क्रिया हमारी वैसे ही चलती रहती है, बुद्धि के निर्णय वैसे ही बने रहते हैं और भोग विलास भी वैसे ही बना रहता है। तो ये बात पर हम विचार करते थे कि मैंने कभी भी विचार किया क्या इस बात को, जो निर्णय वाणी दे रही है कि सब संपत मन को दुखदायी, सारी संपत्ति मन को दुखी करने वाली है। आप विचार करके देखो, क्या आपकी बुद्धि ये कभी स्वीकार करती है या कभी किया है? इसका मतलब हुआ कि वाणी केवल सुन लेने से या केवल पढ़ लेने से उसके सही अर्थ नहीं निकलते, इस पर गहरा मनन करना पड़ता है। यदि मैंने ये बात पढ़ ली, इस सब संपत्ति मन को दुखदाई, तो मुझे इस निर्णय पर पहुंचना तो चाहिए। जहां ये बात लिखी है उसके आसपास दूसरी बात भी लिखी होगी, जरूर लिखी होगी। तो यदि मेरी स्वाध्याय की आदत ही नहीं, मुझके मेरे अंदर विश्वास नहीं कि मेरी जिंदगी की मुसीबत का हल जो है वो इसी में छिपा हुआ है, वो निश्चय ही नहीं बुद्धि में, तो मैं इसको ध्यान से क्यों पढ़ूंगा, क्यों बार बार मनन करूंगा? तो याद रखिए, संपत्ति से हम इंद्रिय भोगों की जो भोगों के लिए का जो सुख है वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और जितने भी इंद्रिय भोग आप भोगते हो वो आपके मन के अंदर पांच विकार की वृद्धि कर देते हैं। सारा संसार का भोग विलास, सारा संसार का सुखी जीवन जिसको बोलते हैं, वो मनुष्य के मन के अंदर पांच विकार की वृद्धि कर देता है। इसलिए पूरे के पूरे देश चौपट हो जाते हैं, बुरा हाल हो जाता है इसको विकास करते करते। जिस देश ने भी विकास किया वो अंत में आके देखा, अपने पूरा इतिहास उठा के देख लिया, चौपट ही हो गया। चाहे वो इंग्लैंड रहा हो, चाहे वो जर्मनी रहा हो, चाहे वो अमेरिका रहा हो, चाहे वो स्पेन रहा हो, चाहे वो यूनान रहा हो, जो वर्तमान देश में अमीर देश है, चाइना अमीर देश है, देख लो क्या हाल हो रहा है, कैसे कैसे निर्णय करता है। उसके देश की अपनी जनता ही परेशान है उससे, दूसरे के लिए क्या करेगा। तो ये बात हमने सीखनी ही होती है अध्यात्म विद्या से, कि संपत्ति इकट्ठी करके या वस्तुएं इकट्ठी करके या भोगविलास के प्रोग्राम बनाकर मानसिक बेचैनी को हम बढ़ा लेते हैं, मन की चंचलता को बढ़ा लेते हैं। इसलिए सुख प्राप्ति का रास्ता क्या है अध्यात्म में, कि मन की चंचलता को कम कैसे किया जाए। इसलिए महाराज जी प्रारंभ में ही सादगी की बात करते हैं, सादा जीवन जिसका तिसका मन प्रसन्न, इसका जीवन सादा उसका मन प्रसन्न रहता। मंगत साधन जो करे पाए अमोलक धन, इस साधन को जो भी अपनाएगा वो अमूल्य निधि अमूल्य धन प्राप्त होगा। वो अमूल्य निधि क्या है, ईश्वर की प्राप्ति। इसी देह के अंदर इस मन को ईश्वर मिल जाता है, अर्थात मन जो है ईश्वर में लग जाता है। और जब मन जब ईश्वर में लगता है तो फिर क्या होता है कि जो सिमरे प्रभु नाम अनामी बंधन त्याग भयो मुक्त करगा। क्या स्थिति होती है, जो भी इस निश्चय को रखकर प्रभु के नाम का स्मरण करता है, नाम भी कौन सा, अनामी, जिस नाम से कोई रूप ना जुड़ा हो वो है अनामी। नाम के साथ यदि रूप जुड़ गया, मेरा नाम है और मेरा रूप है, तो इस नाम की बात शास्त्र नहीं कर रहे। जिस नाम से कोई रूप ना जुड़ा हो वो अनामी है। तो प्रभु का नाम वास्तव में अनामी होता है, जो इंद्रियों के अनुभव में आता ही नहीं है। जो नाम पांच इंद्रियों के अनुभव में आ जाए, हम किसी का नाम लेते हैं तो रूप सामने आ जाता, नहीं आता, वो व्यक्ति सामने आ जाता है, तो इसलिए वो अनामी हुआ ही नहीं। इसलिए जो असली नाम है, असली भक्ति का रास्ता है, वो कौन सा है, जो सिमरे प्रभु नाम अनामी। तो महामंत्र में जाप करो मान लिया, तो मंत्र को नाम भी कहते हैं। कौन सा रूप आपको ध्यान में आएगा, कुछ लोग कहते हैं कि हम महामंत्र का जाप करते हैं मन लगता नहीं है, तो हम कल्पना कर लेते कि महाराज जी का आकार सामने खड़ा कर लेते हैं। तो बताइए कि नाम के आगे रूप खड़ा कर लिया तो द्वंद्व तो यहीं पैदा हो गया, नाम हो गया एक रूप हो गया, किसमें मन को एकाग्र करोगे, नाम में करोगे या रूप में करोगे, तो ये द्वंद्व हो गया। इसलिए नाम केवल एक है और वही अपने आप में ईश्वर है, सारी अध्यात्म विद्या यह तो सिखा रही है। नाम और नामी एक होते हैं। इसीलिए मन की जो चंचलता है वो द्वंद्व के कारण है, दो के कारण है। मन निश्चल कब होगा, मन निश्चल होगा एक चीज में। इसलिए यह बड़ा गहरा शास्त्रों में नाम का रहस्य होता है, राम नाम भज अंतर्यामी। इसलिए वाणी कह रही है राम नाम कौन सा भज जो अंतर्यामी है, तो अंतर तो रूप होता ही नहीं, रूप तो जो आंख से दिखाई पड़ता है वो तो बाहर होता है, अंदर तो आंख देखती ही नहीं। तो इसीलिए प्रभु का वो नाम जिसका रूप कोई नहीं है, वो नाम अपने आप में ईश्वर है। ऐसे नाम को जब आप त्याग करते हो तो कहते हैं बंधन त्याग भयो मुक्त का गामी, तब इसका संसारी बंधन मन से हट जाता है और मुक्ति का गामी हो जाता है। मुक्ति कहाँ है, दसवें द्वार में है, जिसको हम जो है वो कपाल बोलते हैं या कपाल मर में स्थित है वो दसवां द्वार, वही राम का घर है, राम की वाटिका है, जहाँ राम का खुद निवास है। अब बताइए वो आनंद का सागर, वो ज्ञान का सागर, वो शांति का सागर मेरी देह के अंदर मौजूद है, अब मैं संसार में कहां कहां भटक रहा, कौन मुझको गाइड करे। इसीलिए पूर्ण गुरु की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है, कि पूर्ण गुरु जो होता है उसके प्रति मेरी यदि श्रद्धा आ जाए, जैसे महाराज जी के प्रति हमारी श्रद्धा ये कहा जाएगा कि है, इसीलिए यहां आश्रम में बैठे हैं। महाराज जी के प्रति श्रद्धा है तो किस बात पर श्रद्धा होगी, महाराज जी की बात पर श्रद्धा होगी ना आपकी, महाराज जी कह क्या रहे करने को, महाराज जी ने अपने द्वारा जो कर्म किया, अपना जो जीवन जिया वो किस प्रकार का जिया, किसके लिए जिया, उनका जीवन हमारे लिए गाइडेंस है, वो हमारा मार्गदर्शन कर रही है, उनके उनका जितना भी जीवन है वो मार्गदर्शन कर रहा है हमारा। इसीलिए पूर्ण गुरु पर जब विश्वास आपको आता है तब उसकी वाणी पर, उसके विचार पर, उसके द्वारा फिर अन्य शास्त्रों पर हमारा सही विश्वास आता है। तब हमारा सिमरन सही होता है, सिमरन की प्रक्रिया सही होती है। क्योंकि ईश्वर को, ईश्वर के पास पहुंचते कैसे हो? सिमरन के द्वारा ही पहुंचते। संसार में, संसार के पास भी आप कैसे पहुंचते हो? सिमरन के द्वारा ही पहुंचते हो। मन में जिस चीज का सिमरन होता है उसी चीज की तलाश आप संसार में करते हो। मन में प्रभु का सिमरन हो रहा है तो प्रभु की तलाश ही तो आप अंदर करोगे, फिर क्या करोगे? इसीलिए जो सिमरे प्रभु नाम अनामी बंधन त्याग भयो मुक्त का गा। तो मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, मुक्ति इस देह के अंदर ही है। इसीलिए ये मन धीरे धीरे, इसकी कल्पनाएं क्षीण हो जाती हैं और मन प्रभु नाम के साथ एक होने लगता है। जब प्रभु नाम के साथ एक होता है तब मन को एक ऐसी चीज मिलती है जिसको प्रभु ही कहते हैं या प्रभु का अवतार कहते हैं, जिसको महाराज जी नाथ कह रहे हैं। तो मन फिर उसका आनंद लेने का आदि हो जाता है। उसका आनंद लेते लेते मन की एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि बाहर संसार के संकल्प उसके अंदर उदय होना ही बंद हो जाते हैं। वो जिसको हम अवस्था को समाधि कहते हैं, जहां मन के अंदर संकल्प का उठना संभव ही नहीं है, अर्थात मन जीव का पीछा ही छोड़ देता है। तब पता लगता है अपने अनुभव से कि जिस सुख की बात सत्पुरुष कर रहे हैं, जिस शांति की बात, जिस मुक्ति की बात सत्पुरुष कर रहे हैं, वो ये मुक्ति है जो परम शांति है, जो संसार की कोई वस्तु जिसको भंग कर ही नहीं सकती। आनंद पूरा का पूरा है, वस्तु कोई नहीं चाहिए, निज आनंद है वो, किसी वस्तु आधारित आनंद नहीं है वो। तो इसीलिए वाणी कह रही कि प्रभु सिमरन ताई जन जग आया, सिमरे नाम प्रभु चरण समाया। नाम सिमरन के प्रभु के चरणों में ही ये मन समा जाता है, अर्थात इस मन की सत्ता भस्म हो जाती है, ये परमानेंट खत्म हो जाता है। किस देह का पुनर्जन्म होगा? कौन सी देह बनेगी? देह तो मन ही तैयार करता है। मन ही जल गया और जीव परम शांत हो गया, परम संतुष्ट हो गया, उसे कुछ चाहिए ही नहीं, तो शरीर का क्या करेगा? इसीलिए आवागवन का पंध मिटा, जीव पायो सत धाम, मंगत रीति मुकत की, सत सिमरन प्रभु ना। आवागवन का पंध मिटा, आवागवन ही खत्म हो गया। शरीर का पैदा होना, मरना, बीमार पड़ना, जवान होना, बूढ़ा होना, सब खत्म हो गया। जीव पायो सत धाम, और जीव जो सुख प्राप्ति के लिए शरीर का उपयोग करता था उसको सतधाम मिल गया, जहां परमानेंट सुख है, परमानेंट आनंद है, परमानेंट शांति है, वो क्या करेगा किसी चीज का? तो जीव को शरीर चाहिए ही नहीं, वो अपने आप में संतुष्ट हो गया। यही कहिए अपने मूल स्वरूप में, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उसमें वो स्थित हो गया, वही सतधाम है। इसीलिए मंगत रीति मुकत की, सत सिमरन प्रभु ना। तो मुक्ति का जो साधन है, मुक्ति का जो मार्ग है, वो एक ही है कि सत सिमरन करना है, जिसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना। आपने समय आपका है, मन आपका है, शरीर आपका है, इसका सदुपयोग जब गुरु के मार्गदर्शन अनुसार करते हो, उस अंतर्यामी प्रभु से भेंट करने के लिए, तब एक दिन आपको पता लगता है जिसको मैं ईश्वर कहता था वो मेरा स्वरूप है, वो मेरा निज धाम है। इसीलिए मन की बेचैनी से प्रभु के मार्गदर्शन के अनुसार, वाणी के मार्गदर्शन के अनुसार, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार जब मैं सिमरन करता हूँ प्रभु के नाम का, गुरु के बताए हुए रास्ते से, तब मेरा फिर एक दिन ये मुक्ति धाम उसको प्राप्त हो जाता है और जीवन सफल हो जाता है। ओम ब्रह्म सत्य।